समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
श्रोताओं, ये गीत आप सबने सुना होगा। मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी ने, दुनिया के किसी भी कोने में वो रह रहा हो, इस गीत को जरूर सुना होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आज कौन सा दिन है जो हम ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। ना तो 15 अगस्त है, ना 26 जनवरी और ना ही ऐसा कोई और दिन। आज हम ये गीत आपको इसलिए सुनवा रहे हैं क्योंकि इसको गाने वाली गायिका का नाम आप सब जानते हैं कि लता जी ने गाया है, कवि प्रदीप ने इसको लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गीत के संगीत निर्देशक कौन थे? तो आप इसके बारे में जरा सोचना शुरू करिए, याद करना शुरू करिए। स्वागत है आपका कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए अगले आधे घंटे में वो सारी जानकारी लेकर आएंगे जिसका आपसे है सरोकार। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास राज्यों की परिक्रमा करने के लिए और जानेंगे कि उनके पास क्या है खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर दिवस। और कार्यक्रम के इसी हिस्से में हम आपको बताएंगे उस संगीतकार के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है और जिनका रचा गीत है ये। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुस्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुदिता, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस मुदिता, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि ज्यादातर जो है गाने का क्रेडिट ले जाता है सबसे पहले सिंगर या फिर उसके बाद जिसने उसके बोल लिखे होते हैं। बट द कंपोजर इज द अनसंग हीरो, यू कैन से, ऑफ अ सॉन्ग। बिकॉज आई रिमेम्बर गुलजार साहब इन एन इंटरव्यू सेड कि जब उनसे पूछा गया कि गाने को सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या चीज बनाती है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था, उसकी धुन।
बिल्कुल सही बात है।
सो वेल, वील गेट टू नो इन आर लास्ट सेगमेंट, एज मुदिता राइटली पॉइंटेड आउट अबाउट द ग्रेट कंपोजर ऑफ यस्टरडेज हु कंपोज्ड दिस वेरी वेरी आइकॉनिक सॉन्ग जिसके बिना हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी अधूरी रहती है। एंड यस, यू आर ट्यून्ड इन टू एफएम गोल्ड। वी आर हियर विद आवर न्यूज मैगजीन परिक्रमा, जो कि जाहिर है हम लोग परिक्रमा करने निकलेंगे देश की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर द लेटेस्ट हेडलाइंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
गवर्नमेंट सेज ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स एम टू क्रिएट रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग डिजिटल पर्सनल डेटा।
स्वास्थ्य मंत्रालय की चीन में फैले एचएमपी वायरस पर कड़ी नजर, मंत्रालय ने लोगों से कहा घबराएं नहीं, सावधानी बरतें।
Four Maoists killed in an encounter with security forces in Chhattisgarh.
और पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीती।
And now it's time for our segment Dateline Inter, in which we take a look at the important developments that are taking place at the national or global level. And of course, today we are going to talk about the metro revolution in India.
Next station is Mayapuri. Male passengers are requested not to sit on the seats reserved for ladies.
So yes, this familiar, you can say, voice that we probably encounter, those who commute to work every day via metro, वो सब जानते हैं कि metro जो है एक lifeline है, खास तौर से शहरों का, in urban cities. Without metro, it's very, very unimaginable to commute to far off places. And yes, we are diving into a story of speed, precision, and innovation today that is transforming the way India moves. Yes, we are going to talk about India's metro revolution, which is a game changer for urban mobility across the nation.
तो श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि रेवोल्यूशन शुरू कहां से हुई थी. साल 2002 में भारत ने आधुनिक मेट्रो युग में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में पहला कदम रखा, जो कि दिल्ली में शुरू हुआ. आज भारत के पास 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाता है. और हम यही नहीं रुक रहे हैं, 998 किलोमीटर के और प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है.
यस, आपने दिल्ली में कहां से शुरुआत हुई है तो बता दिया मुदिता, बट लेट मी टेल आवर लिसनर्स दैट इन द इफ यू टॉक अबाउट द एंटायर कंट्री, देन वेयर वाज द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन ऑफ द कंट्री. वेल, इट बिगन ऑपरेशंस इन कोलकाता. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि क्या वो 2000s में हुआ था या 90s में, वेल यू आर रॉन्ग. इट स्टार्टेड वे बैक इन अक्टूबर ऑफ 1984 विद एन ऑपरेशनल लाइन ऑफ 3.4 किलोमीटर्स विद 5 स्टेशंस. But it took around 23 years to develop the whole network in that city.
बिल्कुल सही बात है, लंबा टाइम तो लगा था सायरा, उसमें उम्मीद से ज्यादा ही टाइम लग गया था. लेकिन एक स्वदेशी प्रोजेक्ट था ये. और आज समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, बहुत कुछ और बदल गया है. तो आज के समय में एक मेट्रो नेटवर्क को चालू होने में 5 साल से भी कम समय लगता है. तब की चुनौतियां और जो नौकरशाही अड़चने थी वो अब कम हो गई है, काफी कम हो गई है.
एब्सोल्युटली, एंड एज यू सेड कि अब तो 5 साल से कम लगता है. और मेरे ख्याल से राजधानी दिल्ली इस चीज का सबसे बेहतरीन नमूना है. Why? Because when Delhi planned to have its own metro network, then it took less than 5 years to make its first stretch operational. The concept of a mass rapid transit for New Delhi first emerged from a traffic and travel characteristic study which was carried out in the city.
और एक और जो अंतर था दोनों मेट्रोज में कि कोलकाता मेट्रो के विपरीत दिल्ली मेट्रो के लिए एक विशेष कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC जिसको हम सब आज जानते हैं, वो बनाया गया, जिसे बिना किसी रुकावट के काम करने की पूरी आजादी दी गई. और इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन रेड लाइन 24 दिसंबर 2002 को चालू हुई. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको शुरू करवाया उस वक्त पे.
Yes, absolutely. And as we all know that metro isn't just about convenience, Mudita. It's also a story about transformation.
Bilkul.
In the last decade alone, the network has tripled and cities have jumped on board literally. From just 5 cities a decade ago, metro connectivity now reaches 23 cities across 11 states. So, well, and the results are that over 1 crore passengers, can we imagine? 1 crore passengers ride the metro daily, which is a whopping 2.5 times increase since the last decade. And if we talk about some of the cities who have jumped on board, well, Delhi to of course hai hi, but Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Kochi, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Noida, Gurgaon, Nagpur, Ahmedabad, and Pune and Kanpur, and ab to Namo Bharat metro bhi shuru hone wali hai. So well, all these cities have literally jumped on board the metro now.
बिल्कुल सायरा, और हमारे जो भी मेट्रो सिटीज हैं, अगर हम देखें तो आज प्रदूषण से बुरा हाल हो रहा है उनका. तो मेट्रो हमें, हमारे लिए कन्वीनियंट है, सुविधा हमको हो रही है, लेकिन साथ ही साथ वो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, और इसलिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो हम लोगों के पास. और पिछले 5 सालों में 1000 से ज्यादा मेट्रो कोच भारत में ही बनाए गए हैं. भारत में निर्मित पहली ड्राइवरलेस ट्रेन पहले ही पटरी पर आ चुकी है. क्या शानदार ये उपलब्धि है.
राजौरी गार्डन, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें.
वेल, सावधानी से उतरे, लेकिन अभी हम लोग अपने इस सफर में फिलहाल मेट्रो के बारे में और बात करेंगे. एंड वेल, द जर्नी ऑफ मेट्रो रेवोल्यूशन डजंट एंड विद इन आवर बॉर्डर्स. इंडिया'स एक्सपर्टीज इज क्रॉसिंग ओशंस टू. वेल, दिल्ली मेट्रो इज बिल्डिंग सिस्टम्स इन बांग्लादेश एंड एक्सपोर्टिंग कोचेस टू कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इवन प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन जकार्ता. इनफैक्ट मुदिता, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हु हैव बीन टू यूएस and to Canada, all these cities, they say ke jo India ki metros hain, they are far, far better than the ones in US. Because maybe uski ek wajah ye bhi ho sakti hai ki wahan bahut pehle shuru hua, to wo wear and tear and coaches purane ho gaye.
Bilkul, bilkul, wo bada fark aapko dikhai deta hai.
Absolutely.
तो अब हम बात करें ऐतिहासिक उपलब्धियों की. तो कोलकाता के में पानी के नीचे मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में सायरा क्या ख्याल है आपका? तो
well, ये अगर कहते हैं ना वो जो इकबाल का बड़ा फेमस शेर था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो खुदा इंसान से खुद पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है.
बिल्कुल बिल्कुल. तो वो ऐतिहासिक लाइन जैसे हुगली लाइन कहा जाता है, उसमें मेट्रो नदी के तल से 33 मीटर नीचे चलती है. और सोचिए महज 45 सेकेंड में नदी के नीचे सफर करना, क्या अच्छा, क्या शानदार अनुभव होता होगा वो भी. तो ये इंजीनियरिंग का कमाल है और इनोवेशन का बेहतरीन उदाहरण है.
दैट्स ट्रू. एंड लास्ट ईयर आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ द नमो भारत RRTS कॉरिडोर बिटवीन साहिबाबाद एंड दुहाई डिपो. प्रायर टू द इनॉग्रेशन ऑफ द दिल्ली सेक्शन, अ 42 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द कॉरिडोर बिटवीन साहिबाबाद एंड मेरठ साउथ दैट फीचर्स 9 स्टेशन वॉज ऑपरेशनल एज वेल.
अब तक नमो भारत ट्रेनों ने 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को सेवा दी है. अन्य सेक्शंस जैसे नई अशोकनगर, सरायका लिखा और मेरठ साउथ मोदीपुरम के निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और इनके जून तक चालू होने की उम्मीद है.
Yes, and if we talk about what does the future hold for our metro revolution? Well, India is on track to overtake even Japan and become the second largest metro network in the world. With metro lines being built at an incredible 6 kilometers a month, the pace is nothing short of lightning fast.
और सायरा, जैसा हमने पहले भी बात की कि मेट्रो ने केवल हमारे आवागमन के तरीके को ही नहीं बदला है बल्कि हमारे जीवन शैली को भी बदला है. सहज, किफायती और साथ ही साथ भविष्योन्मुखी. तो ये शहरों में करने वाली यात्रा को बहुत एक ही आनंदमय यात्रा बना देती है. और हम जैसे जैसे परिवर्तन की इस लहर पर सवार होते जा रहे हैं, एक बात साफ दिखाई दे रही है कि भारत इस क्षेत्र में तेजी से, कुशलता से और बिना रुके आगे बढ़ रहा है.
That's all for now on the Metro Revolution. Until next time, stay inspired and moving forward to our next segment now.
तो अब समय है राज्यों की परिक्रमा का, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास. तो सायरा, हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे?
वेल, परिक्रमा की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नागपुर. और अगर हम लोग की कल्चर की बात करें, हिंदुस्तानी कल्चर की, तो हर त्योहार हो या छुट्टी हो, तो सबसे ज्यादा कह सकते हैं बेहतरीन टाइम पास जिसे कहा जाता है ट्रेडिशनल, वो है पतंग उड़ाना.
बिल्कुल.
एंड काइट फ्लाइंग इज अ वेरी वेरी चेरिश ट्रेडिशन एंड अ पॉपुलर पास टाइम. इट कैरीज हाउएवर सम रिस्क ऑल्सो. और अगर आपको याद है कि पहले जो है हम लोग ने तो वो शीशे वाला मांझा देखा है जिसको फिर उसके बाद चाइनीज वाला नायलॉन मांझा आया, लेकिन दैट इज ऑल्सो अनब्रेकेबल, तो उसके भी अपने रिस्क होते हैं. एंड टू प्रिवेंट दीज डेंजर्स, नागपुर इज प्रमोटिंग द यूज ऑफ सेफो ऑल्टरनेटिव लाइक सूती धागा, जिसे कॉमन पार्लेंस में हम लोग खासतौर से नॉर्थ इंडिया में सद्दी बोलते हैं. दैट इज बीइंग प्रमोटेड एंड हियर इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट.
Kite flying is a cherished tradition and a popular pastime, especially during Makar Sankranti season. Kite flying starts in early January. However, the use of sharp nylon manja, that is kite strings, pose serious dangers, leading to numerous accidents and even fatalities. To address this issue, Dr. Sanjay Dhobre, Senior Professor at the Department of Physics, Rashtrasanta Tukloji Maharaj Nagpur University, has urged the public to switch to suti dhaga, that is cotton thread, as a safer alternative. He emphasized that cotton threads could significantly reduce injuries and accident, particularly in densely populated area where children on motorcycles, pedestrians and cyclists are most at risk. The lack of designated kite flying zones worsened the problem, making Nylon Manja a hazard for everyone. Despite repeated incidents and warnings, society continues to ignore these risks. Dr. Dhobre believes raising awareness and promoting the use of Suti Manja can prevent mishaps and make kite flying safer for all. Himangi Kulkarni with Dhananjay Vankhede for Parikrama from Akashvani Nagpur.
और नागपुर से अब हम चलते हैं खूबसूरत उत्तर पूर्व की तरफ. बीते पखवाड़े मेघालय और राजधानी शिलांग में क्रिसमस त्योहार नववर्ष की पूर्व संध्या के साथ साथ नए वर्ष के आगमन पर बहुत तरह के कार्यक्रमों की गहमा गहमी रही. कई सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए. आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट.
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्ती के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार मेलों के आयोजन की श्रृंखला में शिलांग के निग्रिम में 23 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित किया गया. सीआरपीएफ के पूर्वोत्तर सेक्टर के आईजी दानिश राणा ने बताया कि मेले का प्रबंधन सीआरपीएफ ने किया था. रोजगार मेले में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 124 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे. शिलांग के प्रसिद्ध वार्ड्स लेक क्षेत्र में वार्षिक वाइन फेस्टिवल आयोजित किया गया. मेघालय के पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में स्ट्रॉबेरी सहित मेघालय क्षेत्र के विभिन्न स्थानीय फलों से बनी वाइन प्रदर्शित की गई थी. इनके निर्माण में युवा महिला उद्यमियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही. इस दौरान पर्यटकों ने मेघालय के पारंपरिक व्यंजनों और लोक संगीत का आनंद भी उठाया. मेघालय में नव वर्ष की पूर्व संध्या और नव वर्ष के पहले दिन शिलांग में गीत संगीत के कार्यक्रम हुए. शहर के पुलिस बाजार, लाई मोखरा सहित प्रमुख चौराहों को आकर्षक ढंग से सजाया गया. इस दौरान गीत संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों में युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिलांग से परितोष दीक्षित.
And now moving on to Imphal, the Loktak Lake, which is often referred to as the lifeline of Manipur, holds a unique place in the heart of Manipuri civilization. The lake is home to many water birds, and every year, the bird census is carried out in the lake area and its adjoining wetland area. This year, the water bird census will be starting from the 18th of this month, and preparations for successful conduct of the census is going on. We have more from our Imphal correspondent, J.J. Thokjom.
Loktak Lake of Manipur is designated as Ramsar site in 1990. The lake once home to 127 water bird species, but now it centers only around 50 species, thus reflecting a significant ecological shift of the lake. This year, the water bird census will be carried out in Loktak Lake and other 50 designated adjoining wetland sites from 18 of this month. It will be carried out collectively by Loktak Development Authority, LDA, Wildlife Wing of State Forest Department, Asian Water Bird Census and Indian Bird Conservation Network. The census aims to engage the public and scientists in gathering crucial data to support ecological research. LDA has already started awareness campaign on importance of lakes and water birds, and series of meetings were held with scientists, officials of concerned departments for successful conduct of the census. A working group comprising of government officials and experts has been formed to formulate and implement long-term policies on avian conservation. As part of the census, 3-day-long workshop on Loktak Lake and its water bird species will be held from 10 January, and local volunteers will be given training. In spite of the declining number of water bird species, Loktak Lake and its adjoining wetland sites remain critical habitat for migratory water birds. Therefore, conservation efforts to protect the ecosystem of the lakes are urgently needed. J.J. Thokjom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
और अब खेल जगत की हलचल के साथ हमारे साथ हैं नवीन.
धन्यवाद मुदिता. मुदिता, खेलों की बात करें तो सबसे पहले हम क्रिकेट को लिए चलते हैं, सिडनी की ओर चलते हैं. हम सिडनी में आज सुबह से ही भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें लगी हुई थी और शायद ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच जीत सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 3-1 से अपने नाम कर लिया. जीत के लिए आज उन्हें 162 रन बनाने थे, जो उन्होंने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गई है। फाइनल में इस वर्ष जून में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। अच्छी बात यह रही इस पूरी सीरीज में मुदिता और सायरा कि जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। टेनिस का रुख करें तो सुमित नागपाल न्यूजीलैंड में एसीबी क्लासिक टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के मुख्य दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने आज फाइनल क्वालिफाइंग दौर में फ्रांस के एड्रियन मैनारिनो को पराजित किया। फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल, आज दिल्ली में पंजाब का मुकाबला केरला ब्लास्टर से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पंजाब 12 मैचों में 18 अंकों के साथ अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। हॉकी के मैदान की ओर चलते हैं। हॉकी इंडिया लीग में आज वेदांता कलिंगा लांसर्स का मुकाबला सूरमा हॉकी क्लब से होगा। मैच शाम 6:15 बजे से होगा और वहीं एक अन्य मैच में तमिलनाडु ड्रैगन्स और यूपी रुद्रास के बीच मुकाबला होगा। लेकिन सुबह एक बहुत अच्छी खबर आई जब राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय सेना के वरुण तोमर 10 मीटर एयर पिस्टल के राष्ट्रीय चैंपियनशिप बन गए। आज नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी स्टूल शूटिंग रेंज में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। खेलों की दुनिया में आज दिनभर फिलहाल ना ही रहा। वापस चलते हैं परिक्रमा के लिए मुदिता और सायरा के पास।
थैंक्स नवीन, इतना ही नहीं रहा, बहुत कुछ आपने इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मूविंग ऑन नाउ, वेल द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ टुडे फॉर्मली इनॉग्रेटेड द नेशनल कैडेट कॉर रिपब्लिक डे कैंप 2025। सो कम जनवरी मुदिता एंड द प्रेपरेशन फॉर द रिपब्लिक डे, यू नो द सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे दे स्टार्ट, जिसका बहुत अहम हिस्सा होता है एनसीसी का ये रिपब्लिक डे कैंप। एंड द रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड बाय ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर Anand Saurabh.
Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, today formally inaugurated the National Cadet Corps Republic Day Camp 2025 in Delhi Cant. This year, 2,361 cadets, including 917 girl cadets from 17 NCC directorates covering all the states and UTs of the country, are participating in the RD camp. That will culminate with the Prime Minister's rally on 27th of this month. The cadets attending the camp will be participating in a number of activities like cultural program and institutional training competitions. A contingent of a smartly turned out NCC cadets drawn from all the three wings of Army, Navy and Air Force presented a guard of honor to the Vice President on his arrival. During his address to the cadets, the Vice President conveyed his best wishes for a prosperous new year. He complimented the cadets for their spectacular performance and said that same reflects the deep commitment to unity and discipline. The Vice President brought out that the cadets are fortunate to be living at a time when India is no longer a nation with a potential, it is a nation rising with unmatched infrastructure growth. He exhorted the cadets to make a commitment to following the foundation of our national transformation that rests on 5 basic pillars. He said these pillars are social harmony, family enlightenment by nurturing patriotic values at grassroots, environmental protection, honoring Bharat Ma delves deep into our civilizational ethos, Swadeshi and self-reliance are the key to growth and economy because they are the foundation of Atmanirbhar Bharat and civic values. The Vice President called upon the NCC cadets nationwide to make our country proud and stay vigilant against anti-national forces because that alone will secure our democratic values. Shri Jagdeep Dhankar, along with other distinguished guests, witnessed a spectacular cultural program by talented cadets. The Vice President conveyed his immense pride at having been part of this organization. He concluded by congratulating the NCC cadets for the Republic Day camp and conveyed his best wishes for their journey as citizens of this great nation. For Parikrama, this is Anand Saurabh from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
And now it's time for Azadi Ka Safar.
In today's episode, we remember revolutionary and freedom fighter Barindra Kumar Ghosh, popularly known as Barin Ghosh, who was born on the 5th of January 1880. The younger brother of Sri Aurobindo Ghosh, he was highly influenced by his brother and joined the revolutionary movement and was actively associated with prominent freedom fighter Jatindranath Banerjee.
In 1906, Barindra Kumar published the Bengali weekly Jugantar. Later, the secret revolutionary group Jugantar was formed under the guise of a fitness club in Bengal. He, along with Baga Jatin, was instrumental in recruiting young revolutionaries.
In the intensive police investigation following the murder attempt of Magistrate Douglas Kingsford in 1908, Barindra and Aurobindo were arrested on the 2nd of May 1908, along with other freedom fighters. In the Alipur bomb case, Barindra Ghosh and Ulaskar Datta were sentenced to death. However, with the intervention of Deshbandhu Chittaranjan Das, the sentence was reduced to life imprisonment.
In 1909, Barindra Kumar was deported to a cellular jail, Andaman. Barun was released during a general amnesty in 1920.
He died on the 18th of April, 1959.
We also remember freedom fighter, Buddhist monk and writer Bhadant Anand Kausalyan, who was born on the 5th of January 1905 in Sohna village of Ambala district. He participated in the Quit India movement with his friend and mentor Bhadant Rahul Sankrityayan. Kausalyan is considered as one of the great activists of Buddhism of the 20th century and was greatly influenced by Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar.
Bhadant Anand Kausalyan was the chief officiating priest at the funeral ceremony of Baba Saheb on the 7th of December 1956 at Dadar, Mumbai. He declared that Dr. Ambedkar had attained Nirvana, and it was under his guidance that the cremation ceremony was performed. After the death of Baba Saheb, Bhadant Kausalyan took it upon himself to spread Ambedkar's message and travelled to guide Maharashtra Buddhists.
He also translated Dr. Ambedkar's monumental work, The Buddha and His Dhamma, in Hindi for the benefit of people. Bhadant Kausalyan died on the 22nd of June, 1988.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्म दिवस. तो श्रोताओं, इस क्रम में हम सबसे पहले याद कर रहे हैं उस संगीतकार को जिनका बनाया गीत ए मेरे वतन के लोगों हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाया था. रामचंद्र नरहर चितलकर, जिन्हें फिल्मी दुनिया के लोग प्यार से अन्ना साहब कहकर बुलाते थे और जिन्हें हम आप सब जो है वो सी रामचंद्र के नाम से जानते हैं, उनकी बनाई हुई धुन थी और आज उनकी पुण्यतिथि है. संगीत का शौक उन्हें बचपन से था, लेकिन अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने बतौर अभिनेता की थी. फिल्म थी नागानंद, पिक्चर चली नहीं और इसके बाद निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की सलाह पर उन्होंने फिल्मी संगीत की ओर रुख किया. हिंदी में बतौर संगीत निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी सुखी जीवन, लेकिन असल पहचान बनी 1951 में आई भगवान दादा की फिल्म अलबेला से.
एंड यस, आपने जिक्र किया अलबेला फिल्म का और इसका बहुत ही फेमस गाना, वो भी भगवान दादा पे ही फिल्माया गया है. तो यानी जस्ट अगर हम लोग सुना नहीं सकते, कम से कम बात कर लें. दैट इट वाज आल्सो इन द वॉइस ऑफ सी रामचंद्र, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के. एंड एज यू सेड मुदिता, कि सी रामचंद्र उनका सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, बट ही एक्चुअली कंपोज्ड म्यूजिक इन फिल्म्स यूजिंग हिज नेम अन्ना साहिब ऑल्सो. इनफैक्ट बहादुर प्रताप, मतवाले और मददगार में अन्ना साहिब के ही नाम से उन्होंने संगीत दिया था.
और सायरा, उनके संगीत की खासियत ये थी कि वो अपनी धुनें एक राग में नहीं बनाते थे, मतलब स्थाई और अंतरे के राग अक्सर अलग अलग होते थे. इसके अलावा कई ठुमरियां उन्होंने बनाई हैं फिल्मों में, उनके बनाए कुछ गानों में जो अभी आपने जैसे जिक्र किया, तो गायक का नाम आपको मिलेगा चितलकर. ये चितलकर कोई और नहीं बल्कि सी रामचंद्र खुद थे. तो अभी जैसा सायरा ने जिक्र किया, तो हम उनकी आवाज में सुनते हैं एक गीत.
साथी है खूबसूरत ये मौसम, को भी खबर है.
और बड़ा जीवंत किस्म का है उनका संगीत, जिसमें हिंदुस्तानी राग तो है ही, साथ ही पश्चिमी संगीत का असर भी दिखाई देता है. और यही बात उनके ऑर्केस्ट्रेशन यानी जो वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने इस्तेमाल किए, उसमें भी दिखाई देती है. जहां एक ओर सितार, सरोद, शहनाई, तबले के साथ ढोलक, मंजीरा, घुंघरू सुनाई देते हैं, तो दूसरी ओर पियानो, मैंडोलिन, क्लैरिनेट, स्पैनिश गिटार और वायलिन का प्रयोग भी दिखाई देता है. और दिलचस्प बात यह कि पहले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने अपनी धुनों में वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया.
Inami Nadika Daidamenika Maganaganaga Chika Bikarika Ina minari kadi kadi chai tamani ka maga naga maga naga tika pika rolari ka ram pam poch
We are also remembering another great Urdu shayar aur unka sabse pehle ek sher sunate hain tamam umr tera intezar humne kiya is intezar mein kis kis se pyar humne kiya
kya baat hai shayar saira aur jo hai inki ek badi mashhoor ghazal hai mohabbat karne wale kam na honge jiska mera bada pasandeeda sher hai dilon ki uljhane badhti rahengi agar kuch mashware baham na honge
that was abdul hafiz aur hafiz hoshiarpuri aur isi ke sath dijiye ijazat मुदिता और सायरा को
कार्यक्रम समाप्त करने की
नमस्कार, नमस्कार।